पे थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहूम नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है नीनवे नगर का नाश। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की निकटता में रहते हुए अपने प्रियजनों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से अपने परिवार और मित्रों के साथ परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक में से नहूम नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि नहूम जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, जो परमेश्वर के विनाश को इस पुस्तक में हमें दर्शाता है कि किस प्रकार अश्शूरों को वह सत्यानाश करने वाला है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपकी निकटता में आकर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके वचन का अध्ययन करते हैं नहूम नामक पुस्तक से, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो दूर दराज में बैठकर आपके वचनों को सुनते हैं, पिताजी हमारी विनती है कि आप हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, उन्हें समझने की शक्ति दे, ताकि हर एक आपके वचन को सुनकर आप पर विश्वास कर सके और यह जान पाए कि आप दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं, आप न्यायी परमेश्वर हैं। इसी के साथ हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय निराश, परेशान और चिंता में है, बीमारी अवस्था में है, पिताजी आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनकी बीमारों से आप उन्हें छुटकारा दें। आज के वचन के द्वारा आप हर एक से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं नहूम की पुस्तक से नहूम भावी घटना का उल्लेख करते हुए कहता है कि अश्शूरों का सत्यानाश करने वाला सेना लेकर आएगा, इसलिए यदि वह अपने गढ़ दृढ़ कर सके तो कर ले और अपनी सेना तैयार कर ले, क्योंकि उसने इसराइल और यहूदा की हानि की है। उनकी सड़कों और चौकों में रथ आपस में टकराएंगे, उनके शहरपनाह के गुम्मट जो इतिहास के अनुसार 1500 थे गिर जाएंगे, अर्थात शहरपनाह गिर जाएगी और बाढ़ आ जाएगी जिससे राजमहल पानी में डूब जाएगा, वरन वह बह भी जाएगा। उसका सेनापति सेना को थमने की आज्ञा देगा, परंतु वे अनसुना करके जान बचा करके भागेंगे। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए आज नहुम की पुस्तक 2:4 से अध्ययन को आरंभ करें। नहुम 2:4 में लिखा हुआ है, रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली के सा है। मेरे मित्रों, 4 में व्याख्या की एक विधि है जो सर्वथा अनुचित है। नहुम अश्शूरों और उनके शत्रुओं के रथों के युद्ध की चर्चा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यूनानी इतिहासकार दियोदोरस सिकुलस कहता है कि नीनवे में 200 फुट ऊंचे और 1500 गुम्मट थे, परंतु घेराव के समय टाइग्रस नदी में बाढ़ आ गई और शहरपनाह का एक भाग पूरा गिर गया और शत्रु के लिए नीनवे में प्रवेश करना आसान हो गया। उन्होंने कृषि के लिए बनाई गई नहरों के बांध खोल दिए, जिसके परिणाम स्वरूप राजमहल में पानी भर गया। शहरपनाह में इतनी जगह बन गई थी कि उसमें से रथ प्रवेश कर सकते थे। अतः यह विवरण रथों के युद्ध का है। और कुछ लोगों का कहना है कि यह पद मोटर गाड़ियों की भविष्यवाणी है। ऐसे अर्थ निर्धारण को मैं दुखद मानता हूं और सर रॉबर्ट एंडरसन इसे भविष्यवाणी बेचने वालों की अनर्थ अभिव्यक्ति कहते हैं। आज विश्व संकट और वैश्विक घटनाओं के कारण लोग मनुष्य की रुचि भविष्यवाणियों में बहुत बढ़ चुकी है, परंतु हमें यह बोध हो कि हम भविष्यवाणियों के संबंध में धर्म विधियों से होकर के चलते हैं या नहीं। मेरे मित्रों, हम उन्मादी हो सकते हैं। किसी ने कहा है कि धर्ममान्य मनुष्य वह है जो अपने विचार नहीं बदलता और विषय भी नहीं बदलता है। आज कुछ लोग केवल भविष्यवाणियों तक ही सीमित हैं और वे उनकी व्याख्या करने में अंधे हो जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। मेरे मित्रों, नहुम के कहने का अर्थ क्या है? रथों के पहियों में बर्छी लगी होती थी जो दूसरे रथों के पहियों के संपर्क में आने पर उन्हें काट डालती थी और वह रथ निष्क्रिय हो जाता था। नहुम के कहने का अभिप्राय यही है कि रथ आपस में टकरा रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं स्वीकार करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से नैतिक और आत्मिक प्रसंग उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु भविष्यवाणी को आज के युग में यथार्थ अर्थ देना उचित नहीं है। देखिए, नहुम की पुस्तक कैसी अद्भुत रचना है। यहां परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने का एक और सिद्धांत है। यशाया नबी की पुस्तक 17:10 में वह कहता है, तू मन भाव ने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए। इसका तात्पर्य आज वहां फलवंत संतरों से नहीं है, जबकि वहां संतरों की पैदावार सुलेमान के युग से ही थी। आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2:3 में भी देखेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि हम किसी और युग के मनुष्यों की बातों को आज के युग और मनुष्यों से प्रासंगिक नहीं बना सकते। मैं फिर से कहता हूं कि योना और नहुम की पुस्तकें एक साथ हैं। योना की पुस्तक में आप नीनवे में योना का प्रचार देखते हैं, जब संपूर्ण नीनवे परमेश्वर की ओर फिरा था और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, परंतु समय के अंतराल में वे परमेश्वर को भूल गए। 100 वर्षों के बाद परमेश्वर ने नहुम को बुलाया। उसका संदेश नीनवे के विरुद्ध था, अतः नहुम की पुस्तक में नीनवे के सर्वनाश की भविष्यवाणी है। मेरे मित्रों, वह नगर ऐसा ध्वंस किया गया कि 1850 में जाकर वहां पुरातत्व खोजियों ने खुदाई की, जिनके द्वारा नीनवे और अश्शूरों के बारे में बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिला। आइए हम पढ़ेंगे नहुम की पुस्तक 2:5। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है, वे चलते चलते ठोकर खाते हैं, वे शहर पनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। मेरे मित्रों, नीनवे का पतन मादियों के हाथों से हुआ जब शयर्स राजा अपनी सेना लेकर के आया। बेबीलोन उस समय महाशक्ति नहीं था, परंतु उन्होंने मादी राजा का साथ दिया था। अश्शूरों का राजा अपने सेनापतियों पर विश्वास किए हुए था, परंतु भय के कारण वे लड़खड़ा गए। युद्ध में उस समय शहरपनाह की सुरक्षा युद्ध में मुख्य स्थान रखती थी, क्योंकि उन्हें अपने शहरपनाह को सुरक्षा प्रदान करना होता था, परंतु वे लड़खड़ा गए। तब क्या हुआ, आइए हम आगे पढ़ते हैं। नहुम की पुस्तक 2:6 में लिखा है, नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गल कर बैठा जाता है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि नहुम ने कहा था कि टाइग्रिस नदी नगर में बहेगी। युद्ध के समय वर्षा के कारण उस नदी में बाढ़ आ गई और पानी की मार से शहरपनाह का एक भाग टूट गया, जिसके कारण नगर में बाढ़ आ गई थी। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गल कर बैठा जाता है। मेरे विचार में बाढ़ के कारण राजमहल की नींव बह गई और वह गिर गया था। शहरपनाह का लगभग 2.5 मील का क्षेत्र नदी के किनारे पर था। इतिहास से ज्ञात होता है कि शहरपनाह का एक भाग बाढ़ में बह गया था, यद्यपि नगर जल स्तर से ऊंचा था। बाढ़ के कारण शहरपनाह का एक भाग पूरी तरह गिर गया था, धंस गया था और शत्रु के प्रवेश करने का मार्ग बन गया। दूसरे शब्दों में, शत्रु जिस प्रयास में लगे हुए थे वह बाढ़ के पानी ने संभव बना दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर नीनवे के विनाश में शत्रुओं का साथ दे रहा था। कहा गया है कि शत्रु ने सिंचाई की नहरें खोल दी थी, जिसके कारण राजमहल पूरी तरह पानी में डूब गया था। हम आगे पढ़ते हैं नहुम की पुस्तक 2:7 में लिखा हुआ है, हुसैब नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडकों के समान विलाप करेंगी। यहां पर लिखा है हुसैब। हुसैब का मूल अर्थ है आज्ञा निकाली गई, अतः इस पद को ऐसे पढ़ा जाए, और यह आज्ञा निकाली गई, वह बंदी बनाकर ले जाई जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडकों के समान विलाप करेंगी। बचपन में मैं कुछ चिड़ियों को मारता था गुलेल से या पत्थरों से। हमारे गांव में बांध के पास मवेशियों के पीने के लिए जलकुंड था। वहां दोपहर के समय चिड़िया पानी पीने के लिए आती थी। जब वे उड़ती थी तब उनके फड़फड़ाने से ऐसी आवाज आती थी जैसे कि वे छाती पीट रही हों। नहुम के वर्णन में यही दृश्य प्रस्तुत किया गया है। मेरे मित्रों, प्रसंगवश उस चिड़िया की पुकार भी रोने जैसे ही है, परंतु मुझे बताया गया है कि यह उनकी प्रेम की पुकार है। कई चिड़िए एक दूसरे को प्रेम से पुकारते हैं और उनकी आवाज रोने की सी लगती है, परंतु वे एक दूसरे को प्रेम से पुकारते हैं। नहुम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। नीनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, कहने का अर्थ है बाढ़ के कारण वह नगर तालाब बन गया था। खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। सेना को थमने का आदेश दिया गया, परंतु बाढ़ का पानी और शत्रु को आता देख उन्होंने अपने सेनापति की बात मानना उचित नहीं समझा। वे जितना तेज हो सकता था दौड़ने लगे। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं नहुम 2 अध्याय उसके 9 पद में। यहां पर लिखा हुआ है, चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं। यहां पर लिखा है, चांदी को लूटो, सोने को लूटो। शत्रु को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह उनका सोना और चांदी लूटे, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मन भावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं है। निन्वे नगर धन संपन्न नगर था और उसकी साज सज्जा का जोड़ नहीं था। उनके राजमहल अति सुंदर थे और लोग सुख सुविधा में रहते थे, क्योंकि उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। जी हाँ, उन्होंने उस युग के सब महान नगरों से लूट का सामान एकत्र किया था। दक्षिणी राज्य यहूदा भी उन्हें कर चुकाता था। यही कारण था कि वह नगर धन धान्य से पूर्ण था। नहुम 2 अध्याय उसके 10 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह खाली छुची और सुनी हो गई है, मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं, और उस सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी और उन सबों के मुख का रंग उड़ गया है। यहां पर वह कहता है कि वह खाली और छुची और सुनी हो गई है। अश्शूरों ने सबको लूटकर धन एकत्र किया था, परंतु उनके शत्रु उन्हें लूटकर ले गए। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जैसा करनी वैसा भरनी। इनके साथ ऐसा ही हो रहा था। आगे हम देखते हैं, मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं। पांव कांपने का अर्थ है अत्यधिक भयभीत होना। अश्शूरों की वास्तव में यही दशा हो गई थी। एक समय वे बहुत मजबूत थे, परंतु अब भयभीत थे। आगे हम पढ़ते हैं, और उन सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी और उन सबों के मुख का रंग उड़ गया। मेरे मित्रों, उनके लिए वह समय बड़े भय और आतंक का समय था, क्योंकि वे जानते थे कि उस युग का संसार उनसे घृणा करता है, क्योंकि वे बहुत ही निर्दयी थे। अब उनसे बदला लेने का समय आ गया था। मुख का रंग उड़ गया। मेरे विचार में वे मुख पर राख मल कर विलाप कर रहे होंगे, शोक मना रहे होंगे, क्योंकि विपत्ति के दिन आ गए हैं। नहुम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सिंहों की वह मांद और जवान सिंहों के आखेट का वह स्थान कहाँ रहा, जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे। अश्शूर और बेबीलोन दोनों ही का प्रतीक शेर था। नहुम या तो उस देश के शेरों के विषय में कह रहा था या उनके योद्धाओं के विषय में, क्योंकि उनका राष्ट्रीय चिन्ह शेर था जो उनकी शक्ति का वर्णन करता था। प्रतीक या रूपक जो भी हो, मुख्य बात तो यह है कि वे विलोप हो गए, सब मारे गए, और यही कारण है कि अब उनके पास में सिंह और सिंहनी नहीं है। नहम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था और अपनी सिंहनियों के लिए आहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मांदों में आहेर से भर लेता था। मेरे मित्रों, शेर हो या सेना, उन्हें बहुत अच्छा भोजन मिलता था अर्थात दिया जाता था, परंतु अब शत्रु सब कुछ लूट कर ले गया, इसलिए उनके पास भोजन की भी कमी थी। मेरे मित्रों, यहां पर हम अशुरों की स्थिति को देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर शत्रुओं को उनके लिए भेज करके उनके सर्वनाश के कार्य को कर रहा है। मेरे मित्रों, एक समय उनके पास में था और वे परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराए, लेकिन फिर से उन्होंने उन्हीं कार्यों को करना आरंभ कर दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी और एक मौका भी दिया था। इस बात को स्मरण रखें कि अशुर एक शक्तिशाली राज्य था, महाबली था, परंतु उसे विनाश का सामना करना पड़ा। आज हमारे इस संसार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे देश और स्थान हैं जो अपने आप में बहुबली हैं। उनके पास में सब कुछ है, शक्ति है, सामर्थ है, धन संपन्न सब कुछ है, परंतु याद रखें कि परमेश्वर अपने निश्चित समय पर न्याय करेगा। यदि हम अपने मनों को नहीं फिराते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन का न्याय करेगा। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या आज आप भी उस न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में विनाश लाए, या आप अपने जीवन के उन बुराइयों से मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग पर चलना आरंभ कर दिए हैं। यदि आज तक आपने इस जीवन को नहीं पहचाना है और परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े हैं, तो आज आपके लिए मौका है कि आप भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, क्षमा मांगे और उसे अपने जीवन में आने दें और देखें कि आपके जीवन में शांति और आनंद की भरपूरी होगी। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।